This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Russians in 41 regions have begun in-person voting in September 13th local elections that are viewed as a crucial test for the increasingly unpopular ruling United Russia Party. This is ahead of national legislative elections next year. About 35 million voters, some one-third of the national total, are eligible to cast ballots. As with a recent constitutional referendum that could allow four-term President Vladimir Putin to remain in office for two more terms, monitors from the Organization for Security and Cooperation in Europe were not invited to observe the vote. The elections come less than a month after the August 20th poisoning of opposition leader Alexei Navalny, who is currently hospitalized in Berlin from the suspected ingestion of a Soviet-developed nerve toxin that his supporters blame on the anti-corruption lawyer's Kremlin foes. A U.S. Marine convicted in the Philippines of killing a transgender woman was released from prison Sunday and deported after receiving a pardon from the president of the Philippines. Lance Corporal Joseph Scott Pemberton served about half of his 10-year sentence for killing Jennifer Laud in 2014 in a Philippine motel after discovering she was a transgender woman. In a statement, he said he had spent, quote, much time contemplating the many errors in his ways, and end quote, and he expressed his most sincere sympathy to Loud's family. Pemberton's conviction and subsequent pardon stirred controversy about the Visiting Forces Agreement, a bilateral pact regulating procedures involving U.S. military personnel in the Philippines. Many feel the agreement allows members of the U.S. forces to receive special treatment if they break the law in the Philippines. This is VOA News. Peace talks between the Taliban and Afghan government negotiators get down to business today with the search for a lasting ceasefire, one of many key issues up for discussion. An opening ceremony in the Qatari capital Doha Saturday saw the Afghan government and allies, including the United States, call for a ceasefire. But the Taliban, who have fought a guerrilla campaign against both since they were forced from power in 2001, did not mention a truce as they came to the negotiating table. Nearly two decades since the U.S.-led invasion that toppled the Taliban, the war still kills dozens of people daily, and the country's economy has been shattered, pushing millions into poverty. The Taliban have long worried that reducing conflict could lessen their leverage, even as technical committees from the two sides were due to meet to hammer out an agenda for the talks. Violence continued to rage on the ground. Officials said six police were killed in a Taliban attack in Kunduz overnight, while five officers were slain in another attack in Kapisa province. There are more than 920,000 deaths from COVID-19 globally, with more than 28.7 million infections. The United States has the highest number of deaths, followed by Brazil. India, which ranks third in global deaths and second in infections, has registered a single-day spike of 94,372 new confirmed coronavirus cases, driving the country's overall tally to 4.75 million. The health ministry on Sunday also reported more than 1,100 deaths within a 24-hour period, taking total fatalities up to more than 78,000. The ministry is seeing a high rate of recovery, which it attributed to aggressive testing and prompt surveillance. But experts say India needs to test more due to its huge population. It's climbed to the second worst hit country behind the United States and is now testing more than 1 million people every day. India's parliament is expected to resume work Monday with strict physical distancing. Parliament adjourned in March just before a nationwide lockdown was announced to contain the pandemic. And domestic air travel in Wuhan, China, the epicenter of the global coronavirus outbreak, has returned to pre-pandemic levels, authorities say. The virus was first detected in Wuhan late last year, and the city underwent a draconian 76-day lockdown as its hospital struggled to deal with a tidal wave of cases that required the rapid construction of field hospitals to handle the overflow. Since reopening in early April, numbers of domestic flights serving the city, as well as the number of passengers, recovered as well, according to the operator of Wuhan's international airport. Via remote, I'm Laurel Bowman, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ सादिया ज़ेब्रान झा। आज के शो में आप सुनेंगे एंटरटेनमेंट राउंडअप, आपके मैसेजेस और बातचीत होगी गुलुकार तनवीर आफरीदी से। अगर आपको याद नहीं आया कि मैं किस गुलुकार की बात कर रही हूँ तो चलिए ये गीत सुनिए, यकीनन याद आ जाएगा।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से ये शो और मैं हूँ सादिया ज़ेब्रान झा।
तनवीर अफरीदी का यह गीत आपने सुना। बसंत के महीने में हर छत से बुगाटा के साथ इसी गीत की आवाज सुनाई देती थी। तो बताइए तनवीर, क्या कहानी है इस गीत के पीछे? आपको उम्मीद थी कि ये इतना मकबूल हो जाएगा?
आमतौर पर लोग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि ये इतना हिट हो जाएगा। मुझे 100% यकीन था कि वो हिट होगा। उसकी वजह थी कि बसंत के लिए पंजाबी में कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसपे लाहौरिये भंगड़ा डाल सके। अच्छा, पतंगबाज सजना बहुत अच्छा था लेकिन उर्दू में था।
बिल्कुल।
तो मुझे महसूस हो रहा था कि एक ऐसा गाना जो बसंत पर छतों पे लगा हुआ और लोग नाच सके, उसको फेस्टिविटी हो उसके अंदर और वो बसंत में भंगड़ा कर सके लोग उसके ऊपर। स्पेसिफिकली इट वॉज अ लाहौर प्रोडक्ट, लाहौरी प्रोडक्ट फॉर द फेस्टिविटी ऑफ लाहौर। तो मैंने ये गाना इत्तेफाक से मैं बना रहा था तो उस दौरान मुझे लेक्स एक ग्रुप था यहाँ पर, लेक्सन ग्रुप, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। एक शो कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान पे, तो वहां पर हम एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे हैं और सज्जाद अली को हमने बुलाया हुआ है उसमें, तो मैं उसमें मौका देते हैं तो अगर तुम चल गए उसमें, तुम हिट हो गए तो हम तुम्हें स्पॉन्सर कर देंगे। अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश। अच्छा, मैं कराची में तो मैं शोज कर ही रहा था, थोड़ा थोड़ा टीवी पर आता था, तो सज्जाद भाई वगैरह मुझसे सब प्यार करते थे, मुझे जानते थे सारे, तो मैंने हामी भर ली और मैंने वो गाना जो है ना तैयार उस जमाने में मैं कर रहा था, मैंने रात लगाकर उसको फाइनल किया ताकि अगले दिन सुबह मुझे लाहौर पहुंचना और शाम को वहां फंक्शन करना है, तो मुझे वहां पर कैसे कामयाबी मिलेगी, ये गाना मैं बना के ले जाता हूँ। तो उस जमाने में जो शो टीवी के लिए रिकॉर्ड होते थे तो अमूमन उनमें जो है ना वो लिप सिंक करते थे, तो मैं वो गाना बना कर ले गया। तो बड़ी मेहनत से हमने सारी रात लगा के उसको मिक्स किया, बहुत इनर्जेटिक म्यूजिक बना। तो मैं फिर वहां शाम को फंक्शन में गया तो वहां पे क्यू शीट इस तरह से थी कि पहली जो एंट्री थी वो लाहौर के एक जूनियर बैंड की थी और दूसरी जो एंट्री थी वो मेरी थी और तीसरी सज्जाद अली की थी, मतलब ही वाज अ शो स्टॉपर। और वहां पर सज्जाद अली साहब ने एक हमें सरप्राइज दे दिया और उन्होंने कहा कि यार मेरी एंट्री पहले होगी और तनवीर को एंड में कर दो। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने सजाए मौत दे दी। मैंने कहा कि यार मतलब अब सज्जाद अली उस वक्त सोनी लगती, उनका बहुत हिट चल रहा था, तो मैंने कहा यार ये सोनी लगती गा के उतरेगा तो मैं लामहाला फ्लॉप हो जाऊंगा, इसके बाद मुझे किसने सुनना है, मजमा मुंतशिर होना शुरू हो जाएगा, मुझे अभी इतना कुछ जानता नहीं है। आप यकीन करें मैंने लाहौर की अजमत को उस दिन पहचाना। लाहौर की एक खास बात यह है कि लाहौर वाले नाम से ज्यादा काम को देखते हैं, और आप यकीन करें अगर आपको स्टार बनना है ना तो आपको लाहौर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाहौर वाले ही मेरिट पे स्टार बनाते हैं, ये जर्फ उन्हीं के पास है। आप यकीन करें वो गुड्डी का ट्रैक चला है और मैंने गाना गाना शुरू किया, सज्जाद भाई की गाड़ी बाहर जा रही थी और क्राउड का जो एक चीखना चिल्लाना और जो उनकी नॉइस थी, सज्जाद भाई ने और उनके मैनेजर ने पीछे मुड़ के देखा, आमिर रिजवी जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था, उनका मैनेजर मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि हमने पीछे मुड़ के देखा तो सज्जाद अली कहने लगा वे हिट हो गया। तो बस फिर उसके बाद चलसो चल हो गया, मेरी स्पॉन्सरशिप डील हो गई और मुझे उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान के मैं टूर्स करता रहा, जिन टूर्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ उसकी इब्तदा जो थी वो गुड्डी था।
तो तनवीर आप तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, हो सकता है क्योंकि मैं वहां ज्यादा रही नहीं, मुझे यूं लगा कि जैसे आप कुछ अरसा मंजर से गायब रहे।
बात यह है कि कोई भी आदमी मंजर से गायब रहना नहीं चाहता। असल में मंजर पे जो रखने वाले लोग है ना वो मुझे, मैं बहुत ताजीम के साथ मंजर पे रहना चाहता हूँ, वरना मैं चाहता हूँ कि कोई और मजदूरी करके जिंदगी गुजार लूं। मुझे अगर इतने साल गुजारने के बाद फील्ड में, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने धक्के खा के, इतने बड़े उस्ताद निसार बज़मी साहब जैसे शख्सियत का शागिर्द होने के बाद अगर मुझे किसी को फोन करके ये कहना पड़े कि यार तुम्हारे शो में मैं क्यों नहीं हूँ, हमारे यहाँ टेलीविजन की ट्रांसमिशन ऐसे मिलती है, बड़े कॉन्सर्ट्स ऐसे मिलते हैं, तो मतलब सिवाय 3 बड़े आर्टिस्टों के जो बहुत बड़े हो जाते हैं, ان کے علاوہ باقی سب لوگ لابنگ کر کے جو ہے نا وہ ایموشنل بلیک میلنگ سے یا تعلقات سے وہ کہتے ہیں کہ جی یار وہ تمہارے شو میں میں نہیں ہوں یار, تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے مجھے نہیں ڈالا. وہ کہتے ہیں اچھا چلنے نہیں یار تو یہ کیا فون کرنے ہی لگا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ لابنگ ہوتی ہے. تو میں نے یہ بالکل طے کر لیا ہے کہ مجھے کسی کو نہیں کہنا. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ ڈیلیبریٹلی کچھ ایسے لوگ تھے جو مجھے بی گریڈ یا گڈ بی گریڈ میں جو ہے وہ کنسیڈر کرتے تھے, اور مطلب میں نے ان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ میرا گریڈ مقرر کرے. تو میں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ میں ان لوگوں سے الجھتا, میں نے روڈ شوز کرنے شروع کر دیے, اور میں نے پاکستان کے بڑے بڑے اسپانسرز کے ساتھ ڈیلز کر کے, اور میں نکل گیا گراس روٹ لیول پہ, میں نکل گیا چھوٹے چھوٹے شہروں میں قصبوں میں اپنی آڈینس بنانے. تو میں نے جو جس عرصہ کو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں منظر سے غائب تھا, وہ بالکل تھا, لیکن میں ٹیلی ویژن سے غائب تھا. میں بھلوال میں تھا, میں چیچا وطنی میں تھا, میں میلسی میں تھا, میں وہاڑی میں تھا, میں عارف والا میں تھا, میں بورے والا میں تھا, تو میں میاں والی میں تھا, میں خوشاب میں تھا, میں لیا میں تھا, میں بکھر میں تھا. میں نے ان ان ٹاؤنز میں شوز کیے ہیں جہاں پہ رات کو جہاں سے گزرنا بھی لوگ کرتے ہیں.
بھائیوں کی دوست اور امی نے بلائی ہے آنٹیاں بہت, آج گھر میں ہمارے ہے رش کا سما, کیونکہ ابو نے بلائے ہے انکل جی بہت, یہ سب کرتے ہیں ہم سے پیار سارے, اس لیے لائے ہیں پھولوں کے ہار. سونے دیا تارا دا سے راج دولایا, ویر میرے دا ہویا روپ سوایا, ویر میرے دا ہویا روپ سوایا, چلے نہ جاوے لشکا میرا دل نہیں رجدا, آج دلہے کی بارات لائی خوشیوں کے سوات, کتنی سندر ہے یہ رات, سب چومو میرے ساتھ, سب گاؤ میرے ساتھ, سب ناچو میرے ساتھ, سب گاؤ میرے ساتھ, سب میوزک کے آلات گڑ بڑ کر دو گھر کے حالات, کون ہے جو پوچھ کہے آج کی رات. نچ
نچ آج میرا دل نہیں رجدا, تک تک لوگ
سب کے ارمان میرے بھیا لے کے آئیں گے میری بھابھی جان, آؤ سہرے میں دیکھو میرے بھیا جی کی شان, میرے اللہ میاں تو نے رکھ لیا میرا مان, میرے بھیا اور بھابھی کی رومانی داستان, آج نکلیں گے ان کے بھی سارے ارمان.
Yeah.
سمجھتے ہیں کہ ان شہروں میں اس طرح سے روڈ شو کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟
دیکھیں ان شوز نے مجھے ایک تو یہ ہے کہ وہ جتنا عرصہ میں نے وہ شوز کیے اتنے عرصے تک میں پریشان نہیں رہا, مجھے پیسے بڑے ٹھیک ٹھاک ملتے تھے اور میں کماتا تھا اس میں, اور مجھے خوشی یہ ہوتی تھی کہ یار وہ غریب آدمی جو کبھی بھی 500 روپے کا ٹکٹ لے کر کانسرٹ نہیں دیکھ سکتا, 1000 روپے کا ٹکٹ لے کر کانسرٹ نہیں دیکھ سکتا, میں اس تک خود پہنچ کر اس کو فری میں پرفارم اس کے لیے کرتا ہوں اور پوری پروڈکشن ویلیو اس کے ساتھ کرتا ہوں, لائٹیں ساؤنڈ یہ وہ سب کچھ. وہ خوش ہوتے ہیں وہاں کے لوگ جو ہے نا, بڑے سیون شریف میں میں نے پرفارم کیا, ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں, نوری آباد میں, اور میں نے مزدوروں کے لیے ایکسکلوسیو شوز کیے اور مل ایریاز میں جا کر کیے, تو مجھے خوشی بڑی ہوتی تھی, مطلب اندر سے سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ یار میں پاکستان کے ان لوگوں کے لیے پرفارم کرتا ہوں جو شو جن کو کوئی بھی نہیں دکھانا چاہتا اپنا, کیونکہ کوئی بھی آرٹسٹ غریب آدمی سے ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتا کیونکہ غریب آدمی سے پیسہ نہیں ملتا. تو یہ جو بات ہے اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے انر سیٹسفیکشن ملی اور جتنا عرصہ میں نے وہاں کام کیا اس کے مجھے پیسے ملے. وہ ایسا تھا کہ وہ دور جو تھا وہ میڈیا چھوڑنے کا نہیں تھا. جب میں نے میڈیا چھوڑ کر اور میں نے گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کی طرف دھیان دیا, اس ٹائم میں پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا گرو کر رہا تھا, تو مجھے اس وقت جو ہے نا وہ پرائیویٹ میڈیا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے تھا. جب پرائیویٹ میڈیا کا ارتقائی دور تھا تو مجھے پرائیویٹ میڈیا میں ہونا چاہیے تھا, تو میری فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی اور اس وقت آپ شاید یہ بات نہ کر رہی ہوتی کہ میں کہیں غائب ہو گیا. لیکن بس یہ مجھے نقصان ہوا کہ میں آف ایئر ہوا, لیکن وہ مجھے فائدہ ہوا کہ میں نے پورا ملک اپنا جو ہے اس کے چپے چپے میں جا کے لوگوں کے درمیان.
آپ گیت لکھتے بھی ہیں اور کمپوز بھی کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے کون کون سے گیت جو ہیں وہ خود لکھے بھی ہیں اور کمپوز بھی کیے ہیں؟
جی میں نے اپنے اردو تو تقریباً بہت سارے گیت میں نے لکھے بھی ہیں, کمپوز تو میں خود ہی کرتا ہوں کیونکہ میں بیسیکلی کمپوزر ہوں بنیادی طور پر, میری جو تربیت ہے وہ کمپوزر کی ہے, سنگر کی نہیں ہے. سنگنگ تو بس میں وہ حادثاتی طور پر بن گیا, لیکن جو مجھے ٹریننگ ملی وہ مجھے ایز کمپوزر ملی, اور لیریسسٹ میں اس لیے تھا کہ میرے ابا شاعر ہیں تو وہ مجھے ایک ڈی این اے میں مل گئی چیز, اور اس کے بعد یہ آمد کا سلسلہ تو میرے ہاں بچپن سے تھا, تو اللہ کی دین تھی. پھر یہ ہے کہ میں کانسیپٹ رائٹر اور کاپی رائٹر رہا ہوں نا ایڈورٹائزنگ سیکٹر میں, تو میرا وہ روزگار تھا, ابھی بھی سم ہاؤ ہے, تو میں وہاں سے مطلب جنگلز وغیرہ لکھتا تھا, گیت بھی لکھتا تھا. تو میری جو گیت ہیں دل تیرے نام, جان تیرے نام, ہم ہو گئے جانے جان تیرے نام, وہ میں نے لکھا ہے. نیشنل سانگز میں نے اپنے خود لکھے ہیں بہت سارے, اور اس طرح سے بے شمار گانے لکھے ہیں, وہ جنگلز لکھے ہیں, بہت کام کیا.
تنویر آپ کو خود کون سا سنگر پسند ہے, اور چلیے خاص طور پر جو ہمارے جو نئے سنگر ہیں ان کا بتائیے, اور جو آپ کے ساتھ کے سنگر ہیں ان میں سے آپ کو کون پسند ہے؟
ہاں میرے ساتھ کے جو سنگر ہیں ان میں بہت اچھے لوگ تھے, اس میں ان میں ایز میوزک پروڈیوسر جو ہے مجھے فاخر بہت اچھا لگتا ہے, اور اس میں سجاد بھائی ہم سے سینئر ہے لیکن سجاد بھائی اچھے آرٹسٹ ہیں. مجھے علی حیدر کی جو انٹرٹینمنٹ پیکج تھا اس کا وہ مجھے بڑا پسند تھا, علی حیدر بہت اچھا پرفارم کرتے تھے, ہمارے سے ایک گریڈ سینئر تھے, اور مجھ سے جو سینئر تھے ان میں تحسین جاوید صاحب مجھے بہت پسند ہیں, تحسین بھائی بڑے اچھے ووکلسٹ تھے اور ابھی بھی کام کرتے ہیں, اور میں ان سے ابھی بھی بیٹھتا ہوں, ان کے ساتھ بڑی گپے شپے لگتی ہیں. اور آج کل کے دور میں جو لوگ گا رہے ہیں اس میں راحت فتح علی خان تو ہمارے ہی دور کے ہیں لیکن وہ اب ہٹ دیر سے ہوئے, تو راحت صاحب تو خیر بڑے آرٹسٹ ہیں, ان کے بارے میں کیا تعریف کروں. راحت بھائی اور رفاقت علی خان میرے جو دور کے لوگ ہیں, ان میں رفاقت علی خان صاحب جنہوں نے کن فیکون گایا تھا اے آر رحمان کے, وہ جی جی اپنا رفاقت علی خان میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور مجھے بہت پسند ہے ان کا گانا. راحت فتح علی خان صاحب بہت پسند ہے اور مجھے عاطف اسلم بہت پسند ہے.
بے خواب رتیں بیتے جانا تیرا ہاتھ تو میں آ ہی گیا تھی, شوخ بھی مست بہت تیرا آنچل بھی لہرا ہی گیا,
समझा ही गया मैंने जीवन तेरे नाम किया कब इससे बड़ा
کب سے یہ شوق ہے
آپ؟ سادیا میں چوتھی کلاس میں تھا تو میں آرٹسٹ تھا ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا.
اچھا باقاعدہ؟
اور باقاعدہ آرٹسٹ تھا اور میں مطلب اس وقت میں گانا نہیں گاتا تھا مگر میں سکٹس وغیرہ کرتا تھا اور فنکار تھا. مطلب میری ڈومین طے نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے. وہ پھر کہیں جا کے نویں دسویں میں جا کے میری بہن نے مجھے کہا کہ تم گانے کے تم میوزک کرو, تم کمپوزیشن کی تمہارے اندر جو ہے نا ان بورن ٹیلنٹ ہے اور یہ ہے وہ, تو لکھ بھی لیتے ہو تم گانا اور یہ بھی کر لیتے ہو. تو پھر وہ میں نے میوزک سیکھنا شروع کیا باقاعدہ. ایک کرسچن استاد تھے ذوالفقار بھائی, ان سے سیکھتا تھا, پھر مسعود خان صاحب, پھر بزمی صاحب کے پاس جانا میرا ایک خواب تھا, پھر میں ان کے پاس کسی طریقے سے اپروچ, تو وہاں سے پھر ایک سفر میرا جو ہے وہ شروع ہوا. پھر میں ایک مین اسٹریم میں آ گیا, پھر مجھے کمپٹیشن میں گیا, وہاں سے مجھے پہچاننا شروع کیا لوگوں نے, پھر مجھے اور ٹی وی کا کام ملنے لگا, پھر میں کیسٹ کا میرا کانٹریکٹ ہو گیا. تو 24 گھنٹے میں اب فنکاروں کے اور گانے بجانے والوں کے بیچ میں رہتا ہوں.
ملازم سب نہ پائے تار مگر برسوں کے وظیفہ
سروس سے آپ سن رہے ہیں یہ شو اور میں ہوں سادیہ زبران جھا اور آپ گفتگو سن رہے ہیں گلوکار تنویر آفریدی کی.
اچھا تو اب کمپوز زیادہ کر رہے ہیں گیت لکھ رہے ہیں یا سنگنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے آج کل کس چیز پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں آپ؟
تینوں پر برابر برابر جس وقت جو کام مل جائے.
اچھا
جو مزدوری جس وقت مل جائے تو وہ پکڑ لیتا ہوں. اور میں نے ایک گروپ بنایا ہے پاکستان میں پہلا گروپ ہے جو میوزک کمیونٹی کو یکجا کرتا ہے اور جو کام کرنے والے جو میوزیشن ہیں نا اصلی جو لوگ ہیں ان کی میں نے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے نغمہ ساز کے نام سے. یعنی نغمہ سازی کے ہنر سے وابستہ جو افراد ہیں شاعر موسیقار سازندہ یہ لوگ گلوکار آڈیو ٹیکنیشنز ان کا ایک میں نے گروپ بنایا ہوا ہے تو ان کو یکجا رکھنا اور لوگوں کے ساتھ مرنا جینا راہ و رسم یہ سب چیزیں. اب جو لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے اب کراچی اور لاہور کے اپنے سارے میوزیشنوں کے گھروں پہ راشن بشن پہنچانے کا اہتمام کیا تھا جو ہمارے حساب سے جن کو ضرورت تھی. تو ہم سب نے مل کر ہمارے نغمہ ساز گروپ نے مل کر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی سخت لاک ڈاؤن کے اندر اور اس کو اسپانسر میری کمپنی ای ایم آئی نے کیا تھا. تو ہم نے بڑی محنت سے یہ بھی ایکٹیویٹیز ہماری آج کل سائملٹینیسلی چل رہی ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں یہ شو اور میں ہوں سادیہ زبران جھا اور آپ گفتگو سن رہے ہیں گلوکار تنویر آفریدی کی.
کئی زبانوں میں گیت گائے ہیں رائٹ؟
جی بالکل, میں نے سرائکی میں گایا ہے, سندھی میں گایا ہے, پشتو میں گایا ہے اور پنجابی تو میں نے اس طرح گایا ہے کہ جیسے پنجابیوں نے بھی نہیں گایا. پنجابی میں نے بہت گایا ہے.
جی جی اچھا
پھر کی کرا بس بیٹھی جا
تو کر دیا دنیا بیٹھی جا میں کی بولا کچھ بولی نا میں کیا کہا کچھ آتی نا میں کی بولا کچھ بولی نا میں کیا کہا کچھ آتی نا ہائے کی کرا بس بیٹھی جا ہائے کی کرا بس بیٹھی جا جو کر دیا دنیا بیٹھی جا میں کی بولا کچھ بولی نا
جو کر دیا دنیا پہ کی جا میں بولا کچھ بولی نہ میں کیا نہ
आखियां
फिर की करा बस देखी जा
जो कर दिया दुनिया में की जा मैं की बोला कुछ बोले ना मैं की आखा कुछ आखियां मैं की बोला कुछ बोले ना मैं की आखा कुछ आखियां फिर की करा बस देखी जा हाय की करा बस देखी जा जो कर दिया दुनिया में की जा मैं की बोला
और एक आपको मैं बड़ी अच्छी चीज बता दूं कि मेरी किताब आने वाली है जो मेरे उस्ताद जी की बायोग्राफी है निसार बज़मी साहब की और ये किताब ऑडियो पर भी तैयार है बज़मी साहब की बायोग्राफी और पिछले 50 सालों का जो पाकिस्तानी म्यूजिक है उसका एक रिव्यू भी है इसमें तो ये मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है कोई 350 सफ़े की किताब है और इसमें और मैंने इसको ऑडियो पर नरेट भी किया है
तो ये बताइए कि कोई खास आवाज यानी मेरा मतलब है कि साथी गुलूकार आए जो है उनकी आवाज जो आपको लगता है आपके साथ ज्यादा सूट करती है या आप चाहते हैं उनके साथ डुएट गाना
पाकिस्तान में हमारे यहाँ जब मैं बच्चा था तो रूना लैला के साथ गाने का शौक था और जब मैंने काम शुरू किया मैंने मैडम नूरजहां के साथ मैंने बहुत बातें की है बड़ा टाइम गुजारा उनके साथ हाँ लेकिन यह है कि उस वक्त वो बीमार थी और हम मतलब हमारी जरूरत नहीं थी कि उनसे कभी ये ख्वाहिश करते कि जी आपके साथ गाना गाना है कि आज हमारी सबसे बड़ी गुलूकारा है पाकिस्तान की हुमैरा चन्ना उनके साथ मैंने गाया है और मैं फरिया के साथ गा सकता था फरिया बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छी इंसान है और अब जो है ना वो हमारे यहाँ मेलो आवाज़ों की बड़ी कमी है फीमेल में खासतौर पर और जैसे अब अगर आप कहें ना कि एक आपको अच्छा प्लेबैक सॉन्ग गवाना है अभी मैंने एक सॉन्ग गवाया है रोज मैरी एक बच्ची है यह बड़ा अच्छा गाती है रोज मैरी को मैंने एक कॉम्पोजिशन अपनी गवाई है वो लिखा भी मैंने गाना एक शॉर्ट फिल्म का एक सॉन्ग है वो तो मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे रोज मैरी की आवाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है
तो तनवीर ये बताइए आपने बच्चों का जिक्र किया तो बच्चों में किसी के अंदर ये जरासीम आए हैं जो आप कह रहे थे कि बस चौथी जमात से ही आपको पता था कि आपको इसी तरफ आना है उधर कोई आपने देखी ऐसी ख्वाहिश
मेरी जो बेटी है नूरे फातिमा वो बहुत सुरीली है तो वो है उनमें मतलब कोई बॉर्न टैलेंट है तो उसमें कुछ क्रिएटिव और भी सलाहियतें हैं तो मैंने उसको पूछा था वो कहती है अगर मुझे कुछ इस साइड पर कुछ करना हुआ तो डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन कहती है कि अगर इस साइड पर मुझे कुछ करना हुआ तो फिर मैं डायरेक्शन में जाऊंगी
तनवीर आप बताइए आपको कौन से गाने ज्यादा पसंद हैं
खाने तो मुझे गोश्त होना चाहिए बस कुछ भी हो मुझे पाकिस्तानी खाने ही पसंद है और अरबी खाने पसंद है और उसके अलावा मुझे यहाँ पे जो क्या होता है जो स्टेक्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वेस्टर्न में खुद मैं पुलाव और बिरयानी का बेहतरीन कारीगर हूँ और सालन आलू गोश्त का कीमा शीमा ये वो सब बेहतरीन पका लेता हूँ पराठा भी पका लेता हूँ और अभी मैंने स्टीम रोस्ट भी बड़ा अच्छा बनाया था बकराईद पे उसका भी मैं माहिर हो चुका हूँ
हमारे वो जो सामईन हैं जो शायद उनमें से बहुत से ऐसे हों जिन्होंने आपके वो रोड जो ट्रिप थे आपके वो सारे अटेंड किए हों सुना हो तो उनके लिए कोई आपका मैसेज
उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ अभी कुछ मैंने आखिरी दफा जो वो ट्रिप था मेरा 7 साल पहले था 2013 में इलेक्शन में फिर लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ बहुत खराब रहा ना बीच में अब हमारे यहाँ अभी तो हालात अच्छे हैं माशाल्लाह
जुल्फे घनेरी खो जाऊं इनमें तेरे ही सपने देखूं जाना रात दिन मैं
आप हमारे प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज facebook.com/voaurdu पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं
और आपका फेवरेट सेगमेंट मैं कैसे भूल सकती हूँ, बिल्कुल ब्यूटी सेगमेंट। हमारी बहुत सी सामयीन जो हैं, जो फीमेल लिसनर्स हैं, उन्होंने मुझे लेटर्स लिखे हैं, पैगामात लिखे हैं और इसको बहुत पसंद किया और कहा है बाजी प्लीज अब इसको बंद मत कीजिएगा। मैं बंद नहीं कर रही, बल्कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक माहिर ब्यूटिशियन को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करूं, बल्कि अब गाहे बगाहे हम इनको इन्वाइट करते रहेंगे और ये आपको ब्यूटी टिप्स बताती रहेंगी। अगर कुछ खास आपने पूछना हो और खासतौर पर मेकअप के हवाले से भी अगर आप कुछ पूछना चाहें कि आपकी स्किन टोन कैसी है या फिर ये कि आपकी जो जल्द है वो किस तरह की है, ऑयली है, ड्राई है, उस पर आप किस तरह का मेकअप अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या ऑयल कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज, मैं आपको एड्रेस बताती रहती हूं। अभी भी गौर से सुनिएगा, प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर बताऊंगी। अगर आपके पास कॉपी और पेंसिल नहीं है तो तैयार रखिए और नोट कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि वो मौसम गर्मा जैसे ही खत्म होता है और खजां का मौसम आने लगता है और हल्की हल्की खुनकी जो है आने लगती है, तो तब हमें अपने जिल्द का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, ये बता रही हैं मारिया आज के इस ब्यूटी सेगमेंट में।
मेरा नाम मारिया है एंड मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट हूँ इधर न्यूयॉर्क में, और आज मैं बात करूँगी फॉल की स्किन केयर रूटीन्स के बारे में। खूबसूरती तो हर एक का हक है, इसमें आप चाहे लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप किसी की अम्मी हो, बट सबको खूबसूरत लगने का शौक भी होता है और उनकी राइट भी है। तो मौसम के लिहाज से हमें अपनी डेली रूटीन में क्या क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि हम हमेशा फ्रेश और अच्छे लगें। इस अच्छे लगने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हेल्थी स्किन। पहले बात करते हैं स्किन की सफाई की। आप अपने फेस और गले की स्किन को दिन में दो दफ़ा धोएंगे, लेकिन अक्सर ये होता है कि सर्दियों में ड्राइनेस की कंप्लेंट होती है, तो इसका हल ये है कि हम दो फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे। सुबह वाला फेस वॉश ज़रा हल्का होगा, या कई दफ़ा लोग ऐसे भी करते हैं कि सुबह उठ के पानी के छींटे मार लिए और टॉवल से ड्राई सॉफ कर लिया, लेकिन शाम वाला फेस वॉश आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे क्योंकि शाम को तो आपको सारे दिन की डर्ट और डस्ट उतारनी होती है, तो थोड़ा कुछ आपको स्ट्रॉन्गर चाहिए होगा। एक और चेंज बहुत ज़रूरी है सर्दियों के लिए, और वो चेंज है मॉइस्चराइज़र। फॉल में आपका मॉइस्चराइज़र थिक होना चाहिए बनिस्बत समर में, जब आप मॉइस्चराइज़र ना भी लगाएं तो चलता है, अच्छी बात नहीं है लेकिन चलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर जाके कोई बहुत महंगा सारा मॉइस्चराइज़र लेके आए, बल्कि आपके अपने किचन में दो बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र्स हैं। आप रोज़ हिप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसको उर्दू में हम सरसों का तेल कहते हैं, या आप प्योर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसको हम जैतून का तेल कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों प्योर होने चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताती जाऊँ कि आप हर ऑयल फेस पे नहीं लगा सकते। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं और मज़ीद आपकी स्किन को ख़राब करते हैं, तो अगर आप किचन के ऑयल्स यूज़ करेंगे तो प्लीज़ सरसों का तेल या प्योर ऑलिव ऑयल, अगर बहुत मजबूरी हो तो कोकोनट ऑयल, इसके अलावा और कोई ऑयल नहीं लगाएंगे आप। जब आपकी स्किन क्लिनजिंग और मॉइस्चराइज़र की रूटीन अच्छी होगी तो आपकी स्किन आपकी तरह ही खूबसूरत लगेगी। कुछ स्किन केयर रूटीन्स ऐसी भी हैं जो आपको सर्दियों में अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ड्राइनेस का अक्सर मसला हो जाता है ठंड में और सर्दियों में, तो आपको स्क्रब्स को टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो महीने में एक दफ़ा आप स्क्रब यूज़ कर लें, और बहुत ही जेंटली यूज़ करें और बहुत जेंटल स्क्रब यूज़ करें, स्पेशली जो आपकी अंडर आइज़ हैं जहाँ पे अक्सर हमें हल्के पड़ते हैं, वहाँ पे तो आप बहुत ही अवॉइड करें, बिल्कुल ही सेंसिटिव एरिया है। और अगर आपको कुछ वहाँ पे लगाना भी है मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम या कुछ, तो आप एक हल्की सी टैपिंग मोशन में लगाएंगे, आप इसको रगड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। आखिर में मैं आपको बताती चलूँ कि आपके लिप्स भी काफ़ी ड्राई हो जाते हैं विंटर में, इसको भी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। हल्की सी कोई लिपस्टिक लगा लें, बेसिकली आप कोई लेयर लगाना चाहते हैं ठंड और आपकी स्किन के बिटवीन। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ड्राइनेस की सख्त शिकायत है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सा हल है कि आप अपने कमरे में रात को एक ह्यूमिडिफायर लगा लें। और अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है घर में तो आप ऐसा करें, एक बड़े से देचके में पानी डालें, उसको उबालें और उसकी भाप में फैलने दें। इससे आपकी स्किन को ही आपकी ओवरऑल ब्रीदिंग भी बेटर होगी।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
आप ये शो सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से, और मैं हूँ सादिया ज़िब्रान झा। गुज़श्ता हफ्ते भर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हुआ, इस पर एक नजर डालेंगे। बॉलीवुड की सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। रिया को भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने मुसलसल 3 दिन तफ्तीश के बाद गिरफ्तार किया है। उन पर सुशांत सिंह राजपूत को मुबैना तौर पर खुदकुशी पर उकसाने और मनशियात फराहम करने के इल्जाम हैं। एनसीबी ने मंगल को अदालत में मौकिफ इख्तियार किया कि रिया चक्रवर्ती मनशियात फराहम करने वाले सरगर्म ग्रोह का हिस्सा हैं। रिया पर जुर्म साबित होने की सूरत में उन्हें कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल कैद और 1,00,000 रुपए जुर्माने तक की सजा हो सकती है। सामीन आपको बताते चलें कि सुशांत सिंह राजपूत रवां बरस 14 जून को मुंबई में अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे, और उनकी मुबैना खुदकुशी के बाद उनके खानदान ने सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को इसका जिम्मेदार करार दिया था। सुशांत के अहले खाना ने मौत की तहकीकात जारी रखने की भी दरख्वास्त दायर की थी। रिया चक्रवर्ती ने तमाम इल्जाम से इनकार करते हुए सुशांत सिंह के अहले खाना पर जवाबी इल्जाम आयद किए थे। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर सुशांत को गैर कानूनी तौर पर नशावर अदवियात फराहम करने का इल्जाम भी आयद किया था। सामईन आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस, और मैं हूँ सादिया ज़िब्रान झा। और कोरोना वायरस के सबब सिनेमाघरों की बंदिश के बाद रिलीज होने वाली हॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म टेनेट तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रिलीज के पहले वीकेंड पर ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। क्रिस्टोफर नोलन की साइंस फिक्शन फिल्म टेनेट कई माह की ताखीर के बाद 3 सितंबर को अमरीकी सिनेमाघरों की जीनत बनी, और खबर साइदारे रॉयटर्स के मुताबिक टेनेट को बैन अल-अक़वामी बॉक्स ऑफिस पर भी भरपूर पजीराई मिली है। वार्नर ब्रदर्स की जानिब से मीडिया को जारी एक बयान में कहा गया है कि वो फिल्म के इब्तदाई नतीजे पर खुश हैं और उम्मीद है कि फिल्म सिर्फ वीकेंड पर ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी शायकीन की तवज्जो हासिल करेगी। और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से, ये शो मैं हूँ सादिया ज़िब्रान झा। और सामेईन आपको बताएं कि मशहूर ज़माना ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के खालिक स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स के लिए चीन के बेस्ट सेलिंग 3 साइंस फिक्शन नॉवेल्स पर सीरीज बनाएंगे। नेटफ्लिक्स की जानिब से जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक ये नई सीरीज अंग्रेजी जुबान में होगी, जो चीनी मुसन्निफ के मशहूर साइंस फिक्शन नावलों द 3 Body Problem, द डार्क फॉरेस्ट और डेथ्स एंड पर बनाई जाएगी। इन नॉवेल्स में इंसानों के खलाई मखलूक के साथ पहले राब्ते की कहानी बयान की गई है। गेम ऑफ थ्रोन्स बनाने वाले डेविड बेनियोफ और डीबी वाइज ने एक बयान में कहा है कि ली सिक्सन की 3 हिस्सों पर मुश्तमिल दास्तान एक बेहतरीन साइंस फिक्शन सीरीज है, जो साल 1960 की दहाई से लेकर इंसानियत के इख्तिताम तक के वक्त का अहाता करती है और पढ़ने वालों को कायनात के दूर दराज हिस्सों की सैर कराती है। नेटफ्लिक्स ने अभी तक सीरीज की कास्ट या सीरीज की रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया है। नेटफ्लिक्स ने यह भी नहीं बताया कि उसने नॉवेल्स के नशरियाती हकूक किस कीमत पर हासिल किए हैं। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल इस दास्तान का पहला नॉवल द 3 Body Problem सन 2008 में शाया हुआ था और चीन में साइंस फिक्शन का सबसे मकबूल नॉवल बन गया था। बाद हजां इस सीरीज के 3 नॉवेल्स का अंग्रेजी तर्जमा हुआ, जिसे खूब पजीरा मिली। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग भी इन नॉवेल्स की तारीफ कर चुके हैं। और सामेईन आपको बताते चलें कि इस नॉवेल सीरीज का दुनिया की 20 से ज़ायद जुबानों में तर्जमा हो चुका है, और अब तक दुनिया भर में इसकी 80,00,000 से ज़ायद जिल्दें फरोख्त हुई हैं। आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से ये शो सुन रहे हैं, और मैं हूँ सादिया ज़िब्रान झा। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं facebook.com/sadiazibranjha VOA Urdu, और ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @VOA Urdu। और अब बारी है आपके पैगामात की। पहला पैगाम हमें अकीला मुमताज ने भिक्की से लिखा है। वो लिखती है कि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और आजकल घर पर ही होती हूँ, और पढ़ने के साथ साथ मैं अम्मी से खाना पकाना सीखती हूँ। आप लोगों से भी मुस्तकिल रابطے में रहती हूँ, सारे शो सुनती हूँ। आप लोगों से मिलने को बहुत दिल चाहता है, सोचती हूँ आप लोग कैसे रहते हैं वहाँ, जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है। अखिला सबसे पहले तो शुक्रिया हमारी काविशों को पसंद करने का, और बाकी जहाँ तक सवाल है कैसे रहते हैं, तो हर इंसान अपने तरीके से ही जिंदगी गुजारता है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी मुल्क में रहता हो। अगर आप खुश रहना चाहें तो कहीं भी खुश रह सकते हैं, और अगर जलते कुड़ते रहें तो कहीं भी रहें वैसे ही रहेंगे। और बाकी हर मुल्क में उसके हिसाब से सहूलतें भी होती हैं और निज़ाम भी मौजूद होता है। जी, अगला हाथ है नवीद अहमद का पन्नू आकिल से। लिखते हैं, मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कॉटन के कपड़े से मास्क खुद तैयार किए हैं। मैंने नर्म कपड़ा खरीद कर बाजार वाले मास्क की तर्ज पर खुद सिया और बहुत अच्छा सिला। इसे रोजाना धो भी लेता हूँ। अब सोच रहा हूँ क्यों ना यही काम शुरू कर दूँ। बल्कि बाजी दोस्त अहबाब ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि हमें भी सी दो। वैसे नवीद, ये तो बड़ी अच्छी बात है और अच्छी सोच आई है आपके जहन में। आपने सिलाई किससे सीखी? हाथ में हुनर का होना तो बहुत ही अच्छी बात है। सामेईन, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से ये शो, और मैं हूँ सादिया जिब्रान झा, और हम पढ़ रहे हैं आपके पैगाम जो आपने हमें फेसबुक पर भेजे हैं। कुर्बान अहमद ने लैया से लिखा है कि मैं आपके तवसुत से अपने सुनने वालों को और खास तौर पर नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि काम करने या कमाने या फिर नौकरी करने के लिए किसी खास उम्र या एमए की डिग्री होना जरूरी नहीं। आप पढ़ाई के साथ कुछ न कुछ करके अपने घर वालों का हाथ बटा सकते हैं। कहते हैं कि बाजी, मैं बहुत छोटा था तो अपनी वालदा से आलू चने बनवाकर स्कूल ले जाता और रिसेस के दौरान बेचता था। मेरे वालिद होलसेल से मुझे टॉफियां ला देते थे जो मैं थोड़े से मुनाफे के साथ स्कूल में बेचता था। फिर कुछ बड़ा हुआ तो गुलेलें बनाने का काम शुरू किया, और जो कि लकड़ियों और रबर से तैयार होती थी, बहुत ही कम खर्चा आता था जबकि अच्छी खासी बिक जाया करती थी। इसी तरह मैंने उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ काम किए और अपने खर्चे और फीस के साथ साथ वालदा को भी कुछ न कुछ दे देता था। फिर मैंने कुत्तों के बच्चे लाके पाले और उन्हें बेचा करता था, और फिर ट्यूशन पढ़ाई। मैंने मास्टर्स कर लिया है और आज तक घर वालों से फीस के पैसे नहीं लिए। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि कुछ न कुछ जो आपके ख्याल में मुनाफा बख्श हो सकता है और आप कर सकते हैं, जरूर करें। लिखते हैं कि जब तक हमारे यहाँ एक कमाने वाला और पूरा खानदान खाने वाले का फार्मूला रहेगा और एक ही शख्स पर सारा बोझ रहेगा, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं बाजी? कुर्बान, वैसे सुनने वाले तो आपकी बात समझे या ना समझे, मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ आपकी सोच में। बिल्कुल सही कह रही हूँ कि जब तक आप जैसे नौजवान हैं, मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेगा। क्या बात है आपकी, यहाँ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर कोई अपना बोझ खुद उठाता है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है, और इसे फख्र की बात समझा जाता है कि आप किसी पर अपनी जिम्मेदारी डालने की बजाय अपना बोझ खुद उठा रहे हैं, या इसे यूं कह लें कि वालदैन की जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बहुत जबरदस्त काम किया आपने, इम्प्रेसिव कुर्बान। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप ये शो सुन रहे हैं, और मैं हूँ सादिया जिब्रान झा, और सुन क्या रहे हैं बल्कि ये शो खत्म होता है। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं facebook.com/sadiazibranjha.voaurdu पर, और ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu। अगले हफ्ते आपसे हवा के दोष पे फिर मुलाकात होगी। सादिया जिब्रांजा को वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से इजाजत दीजिए। अपना और अपने आस पास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا۔